This is an ABP Life podcast.
ग्रेजुएशन के बाद भी पीएचडी अब कर सकेंगे? अब 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा करके ही स्टूडेंट्स पीएचडी कर सकेंगे, नेट का एग्जाम दे सकेंगे। इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यानी यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने दी। आपको नया नियम भी बता दूं। नए नियम के मुताबिक अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि JRF जिसे हम कहते हैं, इसके साथ या इसके बिना पीएचडी करने के लिए उम्मीदवारों को अपने 4 साल के ग्रेजुएशन में कम से कम 75% 75% नंबर लाने होंगे। अभी तक नेट के लिए उम्मीदवार को कम से कम 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री की जरूरत होती थी। अब स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में भी 75% मार्क्स स्कोर करके नेट और पीएचडी कर सकेंगे। जिन कैंडिडेट्स ने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन में 75% से कम मार्क्स हैं, वो पहले की ही तरह 55% स्कोर के साथ मास्टर्स करके नेट पीएचडी कर सकेंगे। लेकिन इसी के साथ हमारे मन में उठते हैं ढेर सारे सवाल। आखिर ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करने की अनुमति दी क्यों जा रही है? पहले का नियम तो यही कहता था पहले ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या बच्चा 4 साल की ग्रेजुएशन में पीएचडी करने योग्य बन सकता है? यूजीसी का ये फैसला क्या फायदेमंद साबित होगा या नुकसानदेह होगा बच्चों के भविष्य के लिए? अगर ऐसा है तो छात्र मास्टर्स डिग्री करेगा भी? क्या इससे एजुकेशन की क्वालिटी पर सवाल आएंगे? आइए इन तमाम जरूरी सवालों का जवाब जाने FYI में एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ। हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं प्रोफेसर SK सिन्हा, डीन अकेडमिक अफेयर्स इन चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर।
सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो यही, अगर आप ये बताएं कि पहले ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इसके बाद पीएचडी में प्रवेश मिलता था, अभी तक तो यही चलता आ रहा था नियम, ऐसा क्यों था? क्या बच्चा 4 साल के ग्रेजुएशन में पीएचडी करने योग्य बन सकता है?
मैडम, इसमें मुझे ये कहना है, ग्रेजुएशन जो हम बता रहे हैं वैसे तो है ग्रेजुएशन, लेकिन ये 4 ईयर ग्रेजुएशन है। 4 ईयर ग्रेजुएशन का मतलब है कि जनरली ग्रेजुएशन 3 ईयर्स में होता है, 1 साल एक्स्ट्रा बच्चा पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद अगर हम वैसे देखें तो एक तरह से वो पीजी का 1 साल का कोर्स वो कर चुका है। उसके बाद जब वो पीएचडी में इन्वॉल्व होगा, ये पहले भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था कि ये प्रोविजन था इसमें, इसका मतलब है कि जो पीएचडी 2 साल का जनरली होता था उसमें 6 मंथ का हम कोर्स वर्क कराते थे, तो कुल मिला के वो कोर्स वर्क का जो समय है जो लगभग 1 साल कोर्स वर्क में निकल जाता था, और पीएचडी का मिनिमम रिक्वायरमेंट टाइम होता था 2 साल। तो मुझे लगता है कि अगर 4 साल में 3 साल के बाद जो बच्चे को हम ऑनर्स और रिसर्च का डिग्री देंगे, तो वो बच्चा अगर वो पीएचडी में डायरेक्ट इनरोल्ड होगा तो पीएचडी का जो 3 साल का कोर्स होगा उसमें 1 साल का कोर्स उनका पीजी लेवल का ही होगा रिसर्च ओरिएंटेड, और उसके बाद 2 साल में वो अपना रिसर्च सबमिट करेगा। ये है, और मुझे लगता है कि इससे बच्चों का समय का नुकसान नहीं होगा, बच्चा टाइम रहते ही अपनी पढ़ाई पूरा कर सकता है। दूसरी बात है कि पहले भी कहा गया था कि 3 साल में अगर बच्चे को 75% मार्क्स होगा तभी वो 4th साल में एडमिट हो सकता है, जिसमें 5% का जो छूट दिया गया है वो SC ST OBC नॉन क्रीमिलेयर का, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवार को 5% का छूट दिया गया है, और 75% जो बच्चा 4 साल का एवरेज लाता है इसका मतलब बच्चे में उतनी वर्थ और गट है। तो एक नई शुरुआत है और नई शुरुआत को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं जो रिसर्च है वो अपडेट होगा।
जी। पीएचडी के बाद अक्सर छात्र जो हैं वो एकेडमिक्स को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, टीचिंग लाइन में जाते हैं, तो जिस तरह से हम पहले ज्यादा पढ़ने के लिए और वक्त दे रहे थे, अभी 1 साल कम हो जाएगा, इसे 1 साल में क्या बदलाव होते हैं क्या नहीं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता क्योंकि आप उसी इंडस्ट्री से हैं। अब क्या इस तरह एजुकेशन की क्वालिटी पर सवाल आएंगे?
नहीं मैडम, ऐसा देखें कि इस पर एजुकेशन की पॉलिसी पर जो संवाद है ना वो तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो डिग्री की बात हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं वो ये ग्रेजुएशन पहले 3 साल का था, अब ये 4 साल का है, तो कहीं नहीं कहीं एक साल तो हम ज्यादा ही बच्चे को ग्रेजुएशन में ही पढ़ा दिए हैं। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क कहता है कि फोर्थ ईयर में बच्चों को रिसर्च ओरिएंटेड ऑनर्स ओरिएंटेड कोर्स कराना है, तो अगर वो कंटिन्यू पीएचडी में इन्वॉल्व होता है नेट करके थ्रू नेट से जाता है वो, तो वो बच्चा मतलब कि जिसको कह सकते हैं कि अपडेटेड है वो, अब तुरंत वो एडमिशन ले रहा है पीएचडी में, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट बच्चों को भी मिलेगा, रिसर्च भी इम्प्रूव होगा। और जहां तक रहा सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कितना इनके पास वैकेंसी है और नहीं है, क्योंकि अब भी नहीं है, अभी भी कई पीएचडी तो बैठे हुए घर में नौकरी नहीं मिलता, वो एक डिफरेंट मुद्दा है, लेकिन ये उनकी कैरियर के लिए अच्छी चीज है। दूसरी बात यह है कि यूजीसी ने कहा है कि वो किसी भी रिसर्च एरिया में रिसर्च कर सकते हैं, तो वो जो फोर्थ ईयर की जो पढ़ाई है उसको करने के बाद वो किसी भी एरिया को सेलेक्ट कर सकता है, वहाँ रिसर्च कर सकता है, और अच्छे रिसर्च होगा तो हमारे जो स्टेट कंट्री और पॉलिसी मेकर के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा।
ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पीएचडी, डायरेक्ट नेट का एग्जाम देना, बीच में मास्टर्स डिग्री, तो फिर कोई करना चाहेगा नहीं, तब क्या होगा?
नहीं, चार साल का करने के बाद अगर वो 75% से कम स्कोर लाता है तब तो वो एक साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा ही करेगा, फिर उसके बाद वो नेट क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि नेट क्वालिफाई करेगा फिर पीएचडी में इनरोल्ड होगा।
जी, आपसे आपका मत पूछना चाहूंगी, यूजीसी ने तो अपना फैसला दे ही दिया पीएचडी करने की अनुमति ग्रेजुएशन के बाद, चार साल जिनका ग्रेजुएशन का रहता है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। आपसे जानना चाहूंगी आपकी क्या पर्सनल ओपिनियन है बीइंग एन एकेडमिशियन, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में कि ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करना, आप इसे कितना सही या गलत मानते हैं?
मैडम, मेरा तो ओपिनियन एक चीज ऐसा है कि भारत के एकेडमिक सिनेरियो में हम जैसा ऑब्जर्व करते हैं कि यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी होता है जनरली, कॉलेज में तो होता नहीं है। और जो दो तरह की यूनिवर्सिटी, तीन तरह की यूनिवर्सिटी हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में देखा जाता है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो जनरली चीज है। इस तीनों में जो टीचर की शॉर्टेज है और स्टूडेंट की जो लंबी कतार होगा, तो पता नहीं वो बच्चे चाह के भी पीएचडी में इन्वॉल्व हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट वैकेंट सीट बहुत है, रिक्रूटमेंट कम हो रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय लंबे अरसे के बाद कॉलेज में टीचिंग भरा है, तो कॉलेज के टीचर को तो पीएचडी कॉलेज में तो इनका स्वास्थ्य सेंटर नहीं है, क्योंकि कॉलेज में सेंटर बनाना पड़ेगा। अगर यूजीसी इस तरह का रिकमेंडेशन भी दे कि जिस कॉलेज, जो कॉलेज है जहां पर फोर ईयर ग्रेजुएशन चल रहा है, वहां भी रिसर्च सेंटर डेवलप किया जाए और वहां के भी टीचर को पीएचडी सुपरवाइजर बनाया जाए, तब तो कहीं ना कहीं ये इनका जो पॉलिसी है, जो जिस चीज को, जिस सोच पर ये काम करना चाह रहे हैं वो सफल होगा, अन्यथा तो जैसा अभी के हालात है वो हालात अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है।
जी, आखिर में ही आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आपने अच्छे और खराब की बात करी, अब इस फैसले से यूजीसी के क्या अच्छा होगा, जिसको आपने थोड़ा बहुत अभी बीच में बताया भी था कि स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से अच्छा है, वहीं खराब की अगर हम बात करें तो नुकसानदेह भी कैसे हो सकता है?
नुकसान में मैडम ऐसा है कि जैसे बच्चे फोर्थ ईयर करने के बाद ग्रेजुएशन का वो नेट तो क्लियर कर लेंगे, दैट कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर पीएचडी, नेट क्लियर है उनका, क्योंकि इससे पहले अभी यूजीसी ने एक और न्यूज दिया था कि अब नेट का तीन कैटेगरी होगा, एक नेट होगा जिसमें जीआरएफ है और असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है, दूसरा नेट होगा जिसमें सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी होगी, और तीसरा नेट के लिए उसने कहा कि उसके थ्रू वो पीएचडी में इन्वॉल्व होगा, जो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर टेस्ट अरेंज करती है वो ना होकर नेट के थ्रू, यूजीसी नेट के थ्रू ही वो आएगा। तो जितने बच्चे नेट क्लियर करेंगे और नेट क्लियर करने के बाद अगर उनको सुपरवाइजर नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं जो मेरा अनुभव कहता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो कहीं ना कहीं पीएचडी का हिसाब किताब ठीक चल रहा है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कुछ तो प्राइवेट अच्छे हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो बस नॉमिनल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है, और फिर बच्चे वहाँ से भी पीएचडी करते हैं और वो मान्य पीएचडी भी है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है यूजीसी का, एक बेंचमार्क बनाने की जरूरत है यूजीसी को जिससे वो काम हो सके।
एग्जैक्टली। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो हमने इन सवालों में कवर नहीं की, वो आप बिल्कुल बता सकते हैं सर।
नहीं, इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीएचडी के बाद जनरली बच्चे एकेडमिक की ओर जाते हैं। 1% लोग होते हैं जो एकेडमिक को ऑप्ट नहीं करते हैं, वो एक डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहते हैं, ये कम परसेंटेज है। पर जो नए यूथ हैं वो तो इसलिए करते हैं कि हम पीएचडी हो जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन कहीं होगा, तो सिलेक्शन की जो रिक्वायरमेंट होगा उसमें यूजीसी किस तरह से बिहेव करेगी, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कम किया गया है, मतलब मेन सब्जेक्ट, मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट, और रेस्ट क्वालिटी को जैसे एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट, वैल्यू एजुकेशन, एमडीसी, इस तरह का कोर्स है, तो क्या हम उसको कहीं ना कहीं वर्कलोड बढ़ाएंगे, तभी तो रिक्रूटमेंट बढ़ेगा, फिर तो वैकेंसी होगा, क्योंकि जो रिटायरमेंट एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है वो 65 है। आज जितने भी बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में लगे हैं वो कम से कम 30 साल नौकरी करेंगे, तो इसका मतलब 30 साल तो वैकेंसी नहीं आएगा जब तक कि वर्कलोड नहीं बढ़ता है।
ओके ओके जी।
कहीं ना कहीं इस बात को भी तो ध्यान देना है कि अगर हमारे डिपार्टमेंट में 7 पोस्ट है और 7 पोस्ट भरा हुआ है और वो उसकी रिटायरमेंट एज तक 20 साल तक रिटायर कोई नहीं होगा, तो 20 साल तक तो नई रिक्रूटमेंट होगी नहीं।
एग्जैक्टली।
यूजीसी ने एक नॉर्म्स भी दे रखा है कि प्रोफेसर कितना सुपरवाइज करेगा, एसोसिएट कितना सुपरवाइज करेगा, असिस्टेंट कितना सुपरवाइज करेगा
जी।
तो वो भी एक लाइन खींचा हुआ है, तो हम उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं। तो इन सब चीजों पर भी यूजीसी को ध्यान देने की बात है। और जहां तक रिसर्च की बात है, रिसर्च तो पीएचडी तो कर ही रहा है, बच्चे कर ही रहे हैं, पीएचडी डिग्री मिल रहा है, लेकिन आप अगर इसकी क्वालिटी की बात करेंगे तो बहुत बेहतर क्वालिटी तो रिसर्च का है नहीं, क्योंकि यूजीसी ने इससे पहले एक रेगुलेशन दिया था जिसमें कहा था कि पीएचडी करते समय बच्चे को 2 पेपर यूजीसी केयर लिस्ट, स्कोपस, इस सब में कहीं करना है, प्रिंट कराना है, फिर उन्होंने उसको चेंज करके कह दिया कि जरूरी नहीं है कि वो पब्लिश करे ना करे। तो जब आप जरूरी ही नहीं है तो हर एक यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता, और हर एक यूनिवर्सिटी कोई अच्छा रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता, हर एक तरह की यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है, तो कहीं ना कहीं जब हम एक्शन को हटा देते हैं तो क्वालिटी का पता नहीं क्या होगा।
एग्जैक्टली। आखिरी सवाल आपसे ये भी लेना चाहूंगी, इस तरह के जो फैसले हैं ये क्यों लिए जा रहे हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह बनता जा रहा है?
नहीं मैडम, क्या है ना कि फैसला तो अच्छे के लिए लिया जाता है, लेकिन वो कितना अच्छा कर पाएगा कितना नहीं कर पाएगा उसके लिए हमको रिमोट में भी जाने की जरूरत है। जो कभी कोई व्यक्ति गांव की लाइफ को नहीं देखा हो और शहर की लाइफ को देख के अगर कोई प्लानिंग करता है ना, तो उसको हम बोलते हैं वो फेलियर प्लानिंग है, क्योंकि हम बचपन से इस बात को जानते हैं कि 60% पॉपुलेशन गाँव में भी निवास करता है, तो गांव की जो प्रॉब्लम है, रिमोट एरिया में जो यूनिवर्सिटी है वहां क्या प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो 3 कंक्रेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में बटा हुआ है। एक यूनिवर्सिटी में टीचर 58 में रिटायर होता है, कहीं 60 में रिटायर होता है, कहीं 65 में होता है। इसको बैलेंस यूजीसी को करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी टीचर, हायर एजुकेशन का टीचर का एक तरह की पॉलिसी हो, तभी ये स्टेबलाइज होगा। अब साउथ में 58 में रिटायरमेंट है, 60 में कहीं और रिटायरमेंट है, 65 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिटायरमेंट है, तो एक ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और 3 और 4 तरह का आप नियम बना रखे हैं। इस पर यूजीसी को ध्यान देना चाहिए था, इस पर बात भी करना चाहिए था, कहीं न कहीं स्टेबिलिटी होगा लंबे समय तक। सीनियर टीचर की कमी होते जा रही है क्योंकि रिटायरमेंट होता जा रहा है, रिक्रूटमेंट उस हिसाब से हो नहीं रहा है, तो फिर जूनियर टीचर पर बेस्ड है तो क्वालिटी क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हैं।
एंड ऑब्वियसली रिसर्च जो कि एक बड़ी ही जिम्मेदार चीज होती है उसकी क्वालिटी अल्टीमेटली गिरेगी ही गिरेगी अगर सीनियर प्रोफेसर नहीं होंगे डेफिनेटली।
मैम एक चीज और बता दूं इसमें, यूजीसी ने भी हाल ही में सुपरवाइजर का सुपरवाइज करने का वर्कलोड खत्म किया है। तो जब हम बच्चे पर ध्यान ही नहीं देंगे, वर्कलोड ही नहीं मानेंगे, तो एक्स्ट्रा वर्कलोड एज ए ह्यूमन बीइंग कोई आदमी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पीएचडी तो करना नहीं है, बच्चों को करना है। आप पहले था कि सुपरवाइजर को दो आवर का या वन आवर का वर्कलोड में कमी होता था कि आप बच्चों को सुपरवाइज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी टाइम आप नहीं दे रहे हैं। तो केवल ये नियम बनाने से क्वालिटी बढ़ेगा ऐसा मेरा मानना नहीं है।
एग्जैक्टली सर,
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।